मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 18 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसका सूत्र मुझे अभी अभी आई एक प्यारी सी फिल्म से मिला है और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी शायद यह फिल्म देखी होगी। हालांकि फिल्म चल तो रही है, सुपरहिट तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। और इस फिल्म का नाम है, चलिए मैं इससे पहले कि नाम बताऊं, जरा आप अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करके देखिए, सोच करके देखिए कि मैं किस फिल्म की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए। चलिए, खैर मैं अब आपको बता देता हूं क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं सोचने के लिए आपको ज्यादा समय दे सकूं। मित्रों, यह फिल्म है जिसका शीर्षक भी बड़ा प्यारा सा है, तुम्हारी सुल्लू। तुम्हारी सुल्लू, तुम्हारी सुलोचना न कहकर तुम्हारी सुल्लू। यह फिल्म हम लोगों ने देखी और इसकी जो नायिका है, डेफिनेटली मैं उनका बड़ा फैन हूं, उनके अभिनय का। तो विद्या बालन जी को देखने मुझे, उनके अभिनय को देखने मुझे जाना ही था, तो हम दोनों फिल्म देखने गए और बड़ी प्यारी और बड़ी कोमल सी, मृदु सी, बड़ी एक तरह से अल्हड़ सी ये फिल्म है। बड़ा सुकून देने वाली ये फिल्म है अगर आप उसको उस नजरिए से देखेंगे, अपनी थोड़ी आलोचनात्मक बुद्धि को किनारे रख करके सब सोचेंगे तो फिल्म आपको बहुत अच्छा सुकून देगी। दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, देखिए अगर आप वैसे फिल्म को देखेंगे तो कहेंगे कि ठीक है, इंटरटेनिंग फिल्म है, थोड़ा सा लाइट फिल्म है और ऐसा कुछ खास नहीं है जिसमें जीवन के कोई बहुत बड़े संदर्भ मिलते हो, गहराई मिलती हो, विचार मिलते हो। ठीक है, जाओ देखो और थोड़ा सा एंजॉय करके आ जाओ। लेकिन मित्रों, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो अक्सर हम सब देखने वालों के हाथ से छूट जाती है, वह क्या है? सबसे बड़ी जो खूबी है फ्रेंड्स, वह है कि इसमें जो नायिका है विद्या बालन, जो बेसिकली सुल्लू के नाम से वहां पॉपुलर हो गई हैं, उनकी लाइफ फिलॉसफी, लाइफ फिलॉसफी, मैं उसी पर थोड़ी सी बात करने आज जा रहा हूं, जो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी और मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात की भी जानी चाहिए। देखिए, अक्सर आप जब किसी से भी बात करेंगे कि मैं क्या करूं, है ना, हम सब अपने कैरियर को लेकर के चिंतित रहते हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक है, और दूसरों से सलाह लेनी भी चाहिए, मशविरा करना चाहिए और फिर अपने कैरियर के बारे में डिसाइड करना चाहिए। तो ज्यादातर जो समझदार किस्म के लोग होंगे या जिन्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी है, वो भी आपसे ये कहेंगे कि भाई देखो, जो तुमको अच्छा लगता है ना, तुम वो करो, है ना, मतलब अपनी पसंद का काम करो, क्योंकि जब तुम अपनी पसंद का काम करोगे तो बोर नहीं होगे, तुमको निरस्ता महसूस नहीं होगी, तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकोगे और सबसे बड़ी बात है कि तुम उसे एंजॉय करोगे। तो जो तुम्हें पसंद हो वो करो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा खासकर अपने नौजवान साथियों से कि मित्रों, आप लोग इस मायने में बहुत ही अद्भुत काल में रह रहे हैं कि आप किसी भी काम को ले लीजिए, यदि आप अच्छे से करते हैं तो वो आपको प्रसिद्धि दिलाने में सक्षम है। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, काम बटे हुए थे। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप फेमस होंगे, आपका सम्मान होगा, अगर इससे हटकर के कोई दूसरे काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। लेकिन इस मायने में आपका जो वक्त है वो अद्भुत वक्त है। तो मित्रों, फिर हम करते क्या, थ्री इडियट फिल्म भी आपने सबने देखी होगी, हो सकता है कि अभी के बिल्कुल जो नए यंग हैं, जिनके अभी मूछें आनी आनी शुरू हुई है, शायद उन्होंने न देखी हो। उसमें भी संदेश यही दिया गया है कि आप अपनी पसंद का काम कीजिए और पेरेंट्स से भी यही कहा गया है कि देखिए, आप अपने बच्चों को उनकी पसंद का काम करने दीजिए, उनको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने के ही चक्कर में मत पड़िए। तो मित्रों, कहीं तक तो ये बात बिल्कुल सही भी है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो चिंता है इनफैक्ट वो ये है कि क्या सच में हमारे जीवन की, हमारे समाज की या हमारे खुद की ही वो आदर्श स्थितियां हैं, आइडियल सिचुएशन में हम रह रहे हैं जहां हम सभी को अपनी अपनी पसंद का काम मिल सके। मैं जो करना चाहता हूं क्या मुझे वही करने की सारी सहूलियतें मेरे पास हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आज के समय का तो आप यूं कह लीजिए कि यह एक यक्ष प्रश्न है। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर क्या है मित्रों? वह उत्तर मुझे सच पूछिए तो इस तुम्हारी सुल्लू फिल्म में मिला, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, भले ही विषय थोड़ा सा हल्का फुल्का लगेगा, लेकिन जो विषय है उसका जो विश्लेषण है वो मुझे लगता है कि बहुत वजनदार है और इस पर बात की जानी चाहिए। यदि आपने फिल्म देखी हो तो, और अगर नहीं देखी हो तब भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश इसी तरह से बताने की करूंगा कि आपको कोई ज्यादा फर्क न पड़े। लेकिन हां, यदि मेरी इन बातों को सुनने के बाद आपको गुंजाइश लग रही हो कि आप फिल्म देख सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर देखिए, और जिस लाइफ मैनेजमेंट की मैं बात इसमें कर रहा हूं उसको केंद्र में रख कर देखें, तब आप उस फिल्म को सही मायने में बहुत अच्छी तरह से गहराई के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उसे महसूस भी करेंगे। मित्रों, देखिए कि उसमें जो सुल्लू है वो क्या है, बहुत ही अल्हड़ किस्म की वो एक्ट्रेस है ना, वो मां भी हैं, पत्नी भी हैं, उनका एक बच्चा है और बहुत ही अल्हड़ किस्म के हैं। उसके दिमाग में कोई बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे सपने नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सपने ही नहीं है, है ना। वो मध्यम वर्गीय परिवार है और वो चाहता है कि वो अपने जीवन को बेहतर बनाए, या बेहतर कैसे बनाएगा, उसके लिए वो सोचता है कि कुछ करे। उसके हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं एक पुराने किस्म के कारखाने में, वो अपने काम से खुश नहीं है, तो लगता है सुल्लू को कि मैं भी कुछ करूं, अपना योगदान दूं। तो ये लोग प्लान करते हैं, तो कभी तो बड़े ऊंचे ऊंचे प्लान करते हैं कि यार चलो एक टैक्सी की एजेंसी खोल ली जाए, तो एक हमारी टैक्सी हो जाएगी। फिर ये सुल्लू को कहीं से कुछ आरजे के बारे में पता लग जाता है। आरजे आप समझते ना कि आजकल जो FM चैनल्स आ गए हैं उसमें जो कंपेयरिंग करते हैं, जो उद्घोषणाएं करते हैं, उनको आरजे कहा जाने लगा, रेडियो जॉकी कहा जाने लगा। वो बड़े अलग स्टाइल से नाटकीय तरीके से वो बोलने का काम करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, उनको आरजे कहा जाता है। तो सोचती है कि चलो आरजे ही बना जाए, और आप देखिए कि उसके पास आरजे बनने की कोई खूबी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि चलो आरजे बन लिया जाए। जाती है, जद्दोजहद करती है, किसी तरह से वो ऑडिशन देती है और उसमें वो सेलेक्ट भी हो जाती है और आरजे बन भी जाती है, और बन क्या जाती है, बहुत पॉपुलर भी हो जाती है, बेइंतहा पॉपुलरिटी उसको मिलती है। ठीक है, अब जब पॉपुलरिटी मिलती है तो फिर हस्बैंड भी हैं और रात की उसकी ड्यूटी होती है, तो अब उनमें एक तरह से कुछ जो भ्रम की स्थिति बननी चाहिए, संदेह की स्थिति, वो पैदा होती है हस्बैंड के साइड से। तो फिल्मों में ये होता है, कोई बात नहीं। नतीजा यहां तक आता है कि उसे आरजे से छुटकारा पाना पड़ता है कि नहीं, अब ये मैं नौकरी नहीं करूंगी, क्योंकि उसकी फैमिली लाइफ पर उसका एक नकारात्मक दुष्प्रभाव पड़ने लगा था। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि उसमें दो सीन है। शुरू में जब वो आरजे के ऑडिशन के लिए आती है तो उसमें एक सीन है कि काउंटर पर जो महिला है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो एक व्यक्ति से उलझ रही है जो अपने बिल का की मांग कर रहा है कि मेरा बिल का भुगतान कर दिया जाए, और वो भुगतान इस यह कह के नहीं करना चाहती कि तुम्हारा जो टिफिन का खाना आता है ना वो अच्छा नहीं आता। ध्यान दीजिए, उसको ध्यान से सुनती है, राइट। इसके बाद जब वो नौकरी छोड़ करके लौट रही है कह के कि भाई मैं तो नहीं कर सकती, तब फिर वो देखती है वही टिफिन का मामला फिर से उसी काउंटर पर है कि नहीं नहीं तुम्हारा टिफिन लोग पसंद नहीं करते हैं, हम तुम्हारा बंद करवा देंगे, तुम्हारा टिफिन आना बंद हो जाएगा। मतलब वो जो उनकी संस्था है वहां कुछ लोगों के लिए टिफिन आता होगा बंद करके दोपहर के खाने के रूप में, वो तो मुंबई है, बहुत बड़ा शहर है, तो वहां तो इसी तरह से चलती चीजें होती है, और दिल्ली का मुंबई का आपको मालूम भी है कि टिफिन वाला तो बहुत फेमस एक तरीके से मैनेजमेंट का एक आदर्श बन चुका है। खैर, भागती है, फिर से भागती है, मतलब जो उसकी हेड है, और नेहा धूपिया उसकी हेड, कहती है कि मैं यहां टिफिन सप्लाई करना चाहती हूं, टिफिन सप्लाई करना चाहती हूं। अब आप देखिए कहां तो वो आरजे थी और अब कहां कह रही है इस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं टिफिन सप्लाई करना चाहती हूं। दोस्तों, वो जो हिस्सा है ना, वो एक मेरी समझ से मुश्किल से एक दो मिनट का है, लेकिन सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील हिस्सा है और सबसे ज्यादा संदेशप्रद भी है। अब वो जो उनकी हेड है, जो मैंने नेहा धूपिया कहा, नेहा धूपिया उनका ओरिजिनल नाम है, फिल्म में क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, तो वो एक बात पूछती है इस सुल्लू से कि समझ में नहीं आता तुम क्या क्या करोगी, कभी वो कभी वो, अभी तुम आरजे कर रही थी, वो तुमसे नहीं हो रहा, अब तुम उसे छोड़ करके जा रही, अब तुम कह रही हो कि मैं टिफिन सप्लाई करूंगी, या तुम क्या क्या करोगी। उस समय बहुत खूबसूरत जवाब देती है, बस वो जवाब सच पूछे तो इस पूरी की पूरी फिल्म की प्राण वायु है, सांस लेती हुई मालूम पड़ती है, और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे साथ प्रॉब्लम यही, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, भाव कुछ मतलब मैं भाव बता रहा हूं, एग्जैक्ट डायलॉग ये नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे सब चीजें पसंद आती हैं, मुझे सब चीजें अच्छी लगती हैं, और बड़े इनोसेंट तरीके से बोलती है, मतलब जीवन के इतने गहरे मर्म को इतने सामान्य से शब्द में और इतने अनौपचारिक और अल्हड़ लहजे में कोई व्यक्त कर दे मैंने आज तक नहीं सुना, मैं हिल जाता हूं इस वाक्य को सुनते ही कि मैं क्या करूं, मुझे सब चीजें पसंद आ जाती हैं। दोस्तों ये वाक्य अद्भुत वाक्य है जिसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वो वाक्य गहराई में अंदर तक उतरता चला गया। मैं क्या करूं, मुझे सब चीजें पसंद आती हैं, मैं सब चीजों का आनंद लेना जानती हूं। और इसके बाद वहां टिफिन सप्लाई करने लगती है और फिर बाद में वापस जब उनकी स्थितियां आपस के जब उनके जो भ्रम होते हैं दूर होते हैं तो ये फिर से आरजे का काम करने लगती है और उनके जो हस्बैंड और टिफिन सप्लाई वगैरह का काम करने लगते हैं। चलिए हम उस तथ्य पर नहीं जाते दोस्तों। तो जो सुलू ने ये कहा है कि मैं क्या करूं, मुझे सब चीजें अच्छी लगती हैं, क्या यह संभव है, इस पर विचार कीजिएगा। आज मैं इस पर बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं कल इस पर बात करूंगा क्योंकि वक्त मुझे उंगली दिखा रहा है कि अब अपना अपनी जुबान बंद करो। लेकिन आप लोग इस पर सोचिए कि क्या यह संभव है। यहां दो चीजें हैं, राइट। नंबर वन यथार्थ, यानी कि क्या यह संभव है। दूसरा है आदर्श, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदर्श की बात है या वास्तव में ऐसा होता भी है, और अगर होता है तो क्यों होता है, कैसे हो सकता है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता। इस पर आप सब विचार करें। डेफिनेटली मैं इसी विषय पर कल फिर से आप सबसे बात करूंगा क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और मुझे लगता है कि अगर इस जिंदगी का पूरा लुत्फ इसी बार उठाना है तो जिंदगी के इस फलसफे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो फलसफा है, ये फिल्म तुम्हारी सुलू की तरह ही बहुत ही प्यारा फलसफा है। तो मित्रों, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त करने की आप सबसे यही इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।